भगवते वासुदेवाय ओम नमो के परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्यों है कि अघासुर की वध की लीला कृष्ण भगवान के पौगंड आयु में हुई थी और ग्वालवाल ब्रज में आके इस लीला की घोषणा कृष्ण के पौगंड आयु में करने लगे अर्थात ठीक एक साल के अंतर बाद, तो इतना समय क्यों बीत गया? ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न आया परीक्षित महाराज के मन में, उन्होंने पूछ लिया और इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से भावभोर हो गए और सारे भक्ति के अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर धीरे धीरे से वो उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच, नहीं हम ही बोलेंगे क्योंकि ये अभी लिखा हुआ नहीं है श्लोक। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यशिष्यस्य श्रृण्वन्नपि कथा मुहुः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे भागवत उत्तम, हे भागवत अर्थात हे भक्तों में से उत्तम, हे सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम, सर्वश्रेष्ठ भक्त महाभागा, हे सबसे भाग्यशाली महाराज परीक्षित। क्यों परीक्षित महाराज भाग्यशाली माने जाते हैं? क्योंकि उनको कृष्ण कथा में इतनी रुचि थी। यही सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, वो नहीं जिसने राज्य लॉटरी जीत ली हो। भाग्यशाली वो है जिसको कृष्ण कथा सुनने की रुचि है और जो लगातार बैठकर घंटों तक कृष्ण कथा सुन सके और थक न जाए, उब न जाए, उसको भूख और प्यास की याद न आए, नींद न आए, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली है। इसलिए दो बार प्रशंसा कर रहे हैं गुरु शिष्य का। सुखदेव महाराज गुरु हैं, परीक्षित महाराज शिष्य हैं और शिष्य गौरव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे महाभागा, हे भागवत उत्तम, साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। साधु मतलब बहुत अच्छा, पृष्ठम मतलब पूछना। जब भक्तों के सभा में कोई कुछ अच्छी बात कहता है या प्रश्न पूछता है तो साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है, वाह 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 कार करते हैं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वाह वाह कार कर रहे हैं, साधु साधु सुखदेव परीक्षित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है, क्योंकि यन नूतन यसी ईशस्य श्रृण्वन अपि कथा मुहुः। श्रृण्वन आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ईशस्य कथाम, आप श्री हरि की कथा सुन रहे हैं। कितना सुन रहे हैं? क्या आपने एक प्रवचन में आए सुनकर चले गए, 15 मिनट सुना चले गए? नहीं, मुहुः बार बार अर्थात लगातार सुने जा रहे हैं आप कथा। अभी प्राय 5.5 दिन बीत गए होंगे सुखदेव गोस्वामी ने कथा आरंभ किए हुए और परीक्षित महाराज ने कथा सुने हुए, लेकिन परीक्षित महाराज को थके हुए नहीं लग रहे थे। अगर थके हुए होते तो ऐसे बारंबार सुंदर सुंदर प्रश्न क्यों करते? जब हम थक जाते हैं ना तो फिर प्रश्न नहीं करते। जैसे क्लास के बाद पूछते हैं कि कोई प्रश्न, सब बहुत थके हुए हैं, नींद आ रही है, भूख आ रही है, तो सब लोग हृदय में आशा करते हैं कि कोई प्रश्न न पूछे अभी, ताकि और कथा बढ़े नहीं, उतने हमारे प्रसाद के लिए समय बीत जाए। शायद बोले नहीं लेकिन मन ही मन में करते हैं, और कोई प्रश्न पूछता है तो सोचते अरे अरे ये कहां से आ गए, क्या प्रश्न, इसको इसी समय सूझा। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे जा रहे थे और सुखदेव गोस्वामी प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे थे और इसमें रस बढ़ रहा था। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ईशस्य श्रृण्वन अपि कथा मुहुः, आप जो कथा का श्रवण कर रहे हो बारंबार लगातार इतने दिनों से कर रहे हो, लेकिन आप थक नहीं गए। नूतन यसी, आप ऐसे कथा को बना रहे हो, नए से नए बना रहे हो आप इसको। जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हो उससे प्रतीत होता है कि आपके लिए कृष्ण कथा नवीन है, नूतन है। इसमें कोई आपको घिसा पिटा नहीं लग रहा है ये कृष्ण कथा। और वास्तव में ये एक प्रगतिशील भक्त के, उन्नत भक्त के लक्षण होते हैं। केवल वही भक्त जो कृष्ण भावना में बहुत आगे बढ़ चुका है वो ऐसे श्रवण कीर्तन में अधिक समय तक रुचि रख सकता है, नहीं तो अन्य भक्त नहीं रख सकते रुचि, उब जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज के शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, 7 दिन लगातार यूं बैठते हुए कष्ट तो हुआ होगा, सारे ऋषि मुनियों को भी हुआ होगा, लेकिन कृष्ण कथा में इतना रस मिल रहा था उनको कि शरीर के कष्ट को सहन तो कर पाए लेकिन प्राय भूल गए, अपने शरीर को ही भूल गए, देह को भूल गए। ये है कृष्ण कथा का प्रभाव, इसका बल। इसलिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण सूत गोस्वामी को कहने लगे पहले स्कंद में, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहने लगे कि हे सूत गोस्वामी, आप कथा बोलते जाइए, ऐसा मत सोचिए कि हम थक गए हैं। नहीं, जो रसिक हैं, रसिक भक्त हैं, जो रसज्ञ हैं, रसज्ञ मतलब जिनको भगवत भक्ति के रस का ज्ञान है, साक्षात्कार है, वो बारंबार कथा सुनना चाहते हैं और स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में हर क्षण में उनको इस कृष्ण कथा का स्वाद मिलते रहता है। और क्योंकि वो रस, उनको रस का पान कर सकते हैं, इसलिए वो उसका पान करते रहते हैं। अब देखिए, जब हम बहुत भूखे होते हैं और हमें कोई अचानक बहुत अच्छा भोजन देता है, जैसे अमरस है और गुलाब जामुन है, और जब चख ही रहे हैं और कोई कहे कि अभी रोक दो, अभी बस बस कर दो, अभी और प्रसाद मत लो, हमें क्या लगेगा? अरे अभी अभी तो रस लग रहा है, अभी अभी तो हम चख रहे हैं, स्वाद मिल रहा है, और अभी आप कह रहे हो कि हमें बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे भौतिक शरीर ऐसा है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी हम लेंगे तो एक समय आएगा जब हम इतना तृप्त हो जाएंगे कि हम एक कण भी और प्रसाद नहीं ज्यादा ले पाएंगे, होता है ना? फिर घृणा हो जाती है, जितना भी आमरस और गुलाब जामुन रखेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। लेकिन आत्मा, आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। शरीर के वेग तृप्त हो सकते हैं, आत्मा का जो वेग है, जो भगवान के लिए तरस रही है आत्मा, उसको कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। तो जो आत्मा के स्तर में है वही कृष्ण कथा का श्रवण इस रुचि से कर सकते हैं, इतना स्वाद लेकर कर सकते हैं। और क्योंकि आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होती, तो ऐसे रसिक भक्त जो होते हैं जितनी ही कृष्ण कथा चलती रहे उसका पान करते रहने के इच्छुक होते हैं। इसलिए ऋषिगण कह रहे हैं सूत गोस्वामी को, वयम तु न वितृप्याम, कि ऐसा मत सोचिए कि हम थक गए हैं। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के विक्रम अर्थात उनके कार्यकलापों के वर्णन सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरह से यमुनाचार्य, जो श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए, वो कहते हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवन वरस धामनुद्यते रंतुम आसीत। वो कहते हैं, यद अवधि, जब से मैंने क्या किया है, मम चेत, मेरा चित्त कृष्ण के पद में लगा है, तब से क्या होता है, नव नव रस धामन उद्यते रंतुम आसीत, मुझे नए नए रस मिल रहे हैं कृष्ण में, इस कृष्ण भक्ति में। तो इस तरह से ये कृष्ण कथा की खूबी है। कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनकी कथा भी हमेशा फ्रेश रहती है। जैसे कृष्ण हमेशा फ्रेश रहते हैं, जैसे एक नवयुवक होता है, एक बच्चा होता है, तो कैसे लगता है? बिल्कुल फ्रेश लगता है। उसी तरह से कृष्ण भगवान हमेशा किशोर रूप में फ्रेश रखते हैं और लंबे उम्र तक भी वो वैसे के वैसे रखते हैं। तो उसी तरह से उनकी कथा भी ऐसे हमेशा फ्रेश रहती है। इसको कहते हैं नित्य नव नवायमान, मतलब नित्य ऐसे लगता है कि नवीन है, नूतन है। और इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नूतन यसी, कि हे परीक्षित महाराज, तुम रसिक भक्त हो इसलिए इस कथा को तुम हमेशा नूतन ही समझ रहे हो, इसलिए बारंबार कृष्ण कथा श्रवण करने से वही कथा भी नवीन लगती है। ये कृष्ण कथा की खूबी है। जो संसार की कथाएं हैं उनका जब हम श्रवण करते हैं, शायद एक बार अच्छा लगे सुनने से, दूसरी बार सुने अच्छा लगता है, लेकिन कितनी बार? जैसे लोग सिनेमा देखने जाते हैं, कितनी बार देखेंगे वही सिनेमा? हाँ, ऐसे भी लोग हैं थोड़े 10 बार 12 बार भी देख लेते हैं, ऐसे अद्भुत रुचि उनकी होती है संसार में। तो एक भक्त बता रहे थे हमें, एक व्यक्ति की बात जो उनको आके कह रहे थे कि उन्होंने एक सिनेमा 30 बार देखी थी। यह है पागलपन, है ना, संसार का पागलपन। मतलब ऐसे दौरे की कोई सीमा नहीं होती है, एक ही बात 30 बार सिनेमा कोई देखे तो हद के बाहर हो जाती है। लेकिन साधारण तभी कोई व्यक्ति कितने बार वही कथा सुन सकता है, सीमा है उसकी। लेकिन कृष्ण कथा में ऐसी सीमा नहीं है, कोई भी कृष्ण कथा की बात घिसपिटी नहीं लगती। संसार की बातें घिसपिटे हो जाते हैं, बार बार सुनने में उब जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज की कहानी कथा कितनी बार सुनी गदाधर पंडित से, आपको मालूम है? हा? कोई बता सकते हैं? 108 बार पूरा। जैसे जैसे कथा एक बार समाप्त हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा और सुनाओ, दूसरी बार सुनाओ, तीसरी बार सुनाओ, और सुनाओ, सुनाते जाओ, बारंबार सुनाते जाओ। गदाधर पंडित सुनाते गए, चैतन्य महाप्रभु सुनते गए, वही लीला 108 बार लगातार। लेकिन जब हम सुनते हैं कोई लीला, हम क्या सोचते हैं? अरे हमने तो ये बात सुन ली है, अभी क्या बारंबार वही सुनना, अरे कृष्ण ने माखन चोरी कर लिया, कितनी बार सुना है, बचपन से सुनते आए कि कृष्ण ने माखन चोरी की, कोई नई चोरी की हो तो हमें सुनाओ, वही माखन की चोरी वो चल रहा है तब से, और कृष्ण भगवान गायों को चराने ले जा रहे हैं, अरे कितनी बार गायों को चरा रहे, हम सुनेंगे इसको। तो कृष्ण लीला बारंबार वही लीला क्यों ना हो, लेकिन बारंबार सुनने में वो नवीन लगनी चाहिए। ये है लक्षण कि किसी व्यक्ति को रस की प्राप्ति हुई है, इसलिए यहाँ नूतन यसी शब्द प्रयोग करते हैं सुखदेव गोस्वामी। और आगे क्या कहते हैं? सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य यत् श्रिया विटानामिव साधुवार्ता। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सताम, जो भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, सारभृताम, सारभृताम मतलब क्या है? कि जिन्होंने जीवन का सार ग्रहण किया है, सारभृताम। देखिए संस्कृत कितना काव्यात्मक, कितनी काव्यात्मक भाषा है ये, हर एक शब्द कितना मीठा है। तो संत जो भक्त होते हैं वो जीवन का सार लेते हैं, जीवन से देखते हैं कि जीवन में ग्रहण करने लायक क्या है, जीवन में ग्रहण करने लायक क्या है? टेलीविजन, सिनेमा, अच्छे अच्छे कपड़े, सोना, धन, गाड़ी, बंगला, नहीं। जो ऐसे भक्त होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं संसार से या इस ब्रह्मांड से? जो ग्रहण करने योग्य है, लायक है, और वो क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना, कृष्ण, यही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है। कृष्ण इस सारे अस्तित्व के ब्रह्मांड के सार हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से संसार में रहते हुए संसार में कृष्ण को देख सकता है और उसकी बुद्धि उसका चित्त केवल कृष्ण पर केंद्रित कर सकता है, उसको परम हंस कहते हैं। क्यों परम हंस कहते हैं? क्योंकि हंस जो होता है, हंस की खूबी क्या होती है, हंस की विशेषता, हाँ, दूध और पानी, पानी के मिश्रण से केवल दूध खींच के ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता होती है। उसी तरह से परमहंस जो होते हैं, ये संसार से जो अलग अलग चीजें केवल सार कृष्ण भक्ति को खींच कर निकाल लेते हैं। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, पानी और दूध के मिश्रण से पानी निकाल लेते हैं और दूध फेंक देते हैं। इसी तरह से ये संसार के लोग कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी कुछ देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, आते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम ये श्रद्धा तो है ना, कि आ रहे हैं मंदिर में, लेकिन फिर भी भक्ति में ज्यादा जानकारी नहीं है, कृष्ण के प्रति रुचि नहीं है। तो जब मंदिर में आते हैं पहली बार तो कहाँ देखना चाहिए, पहले किनको देखना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे थे वो इधर उधर ऊपर देख रहे हैं मंदिर, ये पत्थर क्या है, ये क्या है, भगवान की वो दृष्टि ही नहीं जा रही। फिर यहाँ सामने आके खड़े हो गए, खड़े होकर भी भगवान को नहीं देख रहे हैं, खड़े होकर भी इधर उधर हाथ भी जोड़ लिए लेकिन इधर देख रहे हैं, फिर वो उधर इधर देख रहे हो, अपने साथी को बोल रहे हैं, फिर आखिर में थोड़ा बहुत देख लिया, है ना। तो पहले आकर भगवान का दर्शन, उनकी वजह से तो ये सब पेंटिंग कर रहे हैं, रंग करा रहे हैं, सब खूबसूरत बना रहे हैं, क्यों, वो विराजमान है इसलिए, वो है इसलिए सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। नहीं तो ये क्या था, एक गोडाउन था पुराना, बंद था, कोई काम यहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ बहुत पाप चल रहे थे, नीचे गायों की हत्या होती थी नीचे वहां पर। अब भक्त लोग आकर अभी कीर्तन करते हैं तो इस जगह में पाप धो रहे हैं सब लोग, आप सबकी कृपा से वास्तव में ये जगह भी पावन हो गया है। फिर राधा गोकुलानंद जी यहाँ विराजमान होने के लिए तैयार हुए हैं, नहीं तो थोड़ी राधा गोकुलानंद आने के लिए यहाँ तैयार होते भक्तों के बिना। तो इस तरह से जो परमहंस होते हैं वो केवल अच्छी बातें ग्रहण करते हैं संसार में से। और कृष्ण कहाँ पाए जाते हैं, भक्तों के संग में, कृष्ण कथा में। और कृष्ण कथा कहाँ पाई जाती है, श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत ये कथा का ग्रंथ है, कृष्ण कथा का ग्रंथ है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। 12वें स्कंद में बताया जाता है श्रीमद् भागवत के बारे में कि ये श्रीमद् भागवतम सारे वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। और जिस व्यक्ति ने ये कथा सुनी है श्रीमद् भागवत से, तद रसामृत तृप्तस्य, जिसको संतुष्टि मिली है, आनंद मिला है इस श्रीमद् भागवत से कथा सुनकर, न अन्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्, उसे और किसी जगह में भला स्वाद या रस कैसे मिल सकता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने इतना रस का पान कराया है परीक्षित महाराज को, तो भला वो और इधर उधर क्यों देखेंगे रस के लिए, स्वाद के लिए। इसलिए ये सार भृताम, तो परीक्षित महाराज भी परमंश है, सार भृताम है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युतस्य यत्, कि सुखदेव प्रगतिशील भक्त के लक्षण होते हैं प्रतिक्षणम, हर क्षण नव्यवत उसे नवीन लगता है, क्या लगते हैं, अच्युतस्य यत्, अच्युत या श्री कृष्ण की कथा हमेशा नए लगते हैं, और उतना ही रुचि लेते हैं वो उस कथा में जैसे कि स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। विटानाम, विटानाम या लंपट, वो कामुक व्यक्ति होते हैं जिनको केवल स्त्रियों की वार्ता अच्छी लगती है। जैसे संसार में लोग हमेशा ही बातचीत करते रहते हैं, तो जिस तरह से कोई कामुक व्यक्ति स्त्री के विषय में रुचि लेता है, बारम्बार उन्हीं बातों वही बातें करते रहता है। उसी तरह से जो भक्त होते हैं उतने ही आसक्त रहते हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण की कथाओं में। दूसरी जगह भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जिस तरह से एक व्यापारी स्वाभाविक तौर से हर जगह यही देखता है कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है, हर घड़ी उसकी बुद्धि यही चलती है कि इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं, इस अवसर का फायदा कैसे बना ले सकते हैं, इस वस्तु से कैसे पैसे बना सकते हैं। भले कचरे में भी पड़ा हुआ कोई वस्तु हो, सोचता है इसका कुछ फायदा लेके पैसा बनाया जा सकता है, इसको साफ किया जा सकता है, इसको ऐसे मरम्मत करके ऐसे किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। तो हमेशा व्यापारी के मन में ही रहता है कि पैसे कैसे बनाए, उसकी दृष्टि संसार को भी ऐसे ही इस दृष्टि से देखता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि कामुक व्यक्ति कहीं भी जाए, जंगल में भी जाए, तो हमेशा काम की बात सोचेगा, हर वस्तु उसको काम की याद दिलाएगी। तो ठीक उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं हर जगह वो कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण की कथा को ही सुनते हैं, समझते हैं, इसमें उनकी रुचि रहती है। इसलिए आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, शृणुस्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे परीक्षित महाराज, शृणुस्व, कृपा करके सुनो। कैसे सुनो? आधे सोते हुए सुनो, आंख बंद करके सुनो? नहीं, अवहितः, बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनो? क्योंकि ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, गुह्य वदामि, ये बहुत लीला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जो दे रहा हूँ, ये बहुत गुह्य बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रूयो, क्यों बताऊंगा? क्योंकि स्निग्धस्य शिष्यस्य, तुम एक बहुत स्निग्ध शिष्य हो। स्निग्ध मतलब जो बहुत विनीत है, नम्र है, जो अच्छी तरह से सेवा भावना से आता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है, इसलिए मेरे जैसे गुरु का कर्तव्य होता है कि तुम जैसे शिष्य को ऐसे गुह्य बातें बताएं। अर्थात ये सारे कृष्ण कथा, ये कृष्ण की लीला, ये बहुत गुह्य विषय है, और केवल वही व्यक्ति अधिकारी होता है इनका पात्र, इनका पान करने के लिए, जो कि नम्र, विनीत, स्निग्ध होता है। दूसरे लोग नहीं इसका पान कर सकते। जैसे वैज्ञानिक लोग इस संसार को जानना चाहते हैं, संसार के परे है क्या है जानना चाहते हैं, लेकिन आक्रमणकारी उनकी भावना होती है, अपने बुद्धि के बल से हम इस ब्रह्मांड को जीत लेंगे, हम जान पाएंगे कि संसार कैसे चल रहा है। एक वैज्ञानिक थे, बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, और उनके अखबार में एक बात आई थी कि वो कह रहे हैं कि हम भगवान के मन को जानना चाहते हैं अपने गणित से। जनाब, आप अपने गणित से भगवान का मन नहीं समझ सकते, आपके पत्नी का मन भी आप समझ नहीं पाएंगे गणित से, खुद का मन भी नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान को क्या समझ पाएंगे। तो कोई तत्व जानना है, इस संसार को जानना है, संसार के परे क्या है ये जानना है, तो आपको सबसे पहले एक सद्गुरु के पास जाना चाहिए, और सद्गुरु के पास जाकर नम्रता से प्रश्न करने चाहिए, सेवा भावना से जाना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि ये गुह्य बातें क्या है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो कि तत्वदर्शिन है, तद्विद्धि, और वहां जाकर प्रणिपातेन प्रकृष्ट रूपेण निपात, निपात मतलब शरणागत होना पूरी तरह से, इस तरह से प्रकृष्ट रूपेण बिल्कुल अच्छे ढंग से शरणागत होकर परिप्रश्नेन, बहुत नम्रता से जो उचित प्रश्न है वो करना, और सेवया, सेवा भावना। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल हम आए, सुने और चले जाएं, सेवा भावना होनी चाहिए, नम्रता से, तब हम पात्र होते हैं ये ज्ञान स्वीकार करने के लिए। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने इस तरह से जब प्रश्न किए शुकदेव गोस्वामी से, तो शुकदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और आगे चल के इस गुह्य बात का वर्णन और भी करने लगे, क्योंकि बड़े प्रसन्न हुए थे परीक्षित महाराज के भावना से। तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें केवल हमसे जो वरिष्ठ हैं उनके प्रति हमें नम्र बनना चाहिए, वो तो स्वाभाविक है, उतना कठिन नहीं है। कभी कभी वो भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उतना कठिन नहीं है। लेकिन हमारी नम्रता की परीक्षा कब होती है? जब हमारे साथ में जो रहते हैं उनके साथ में हम नम्र रह सकते हैं कि नहीं। हमसे जो कनिष्ठ हैं उनसे जब व्यवहार करते हैं हम नम्र रह सकते हैं कि नहीं। हमसे वरिष्ठ हैं हाँ नम्र रहते हैं, लेकिन और भक्तों से और लोगों के सामने कितना हम नम्र रहते हैं, ये वास्तव में सोचने की बात है। क्योंकि कृष्ण भगवान सोचते हैं अपने मन में, वो कहते हैं, अब हम सबको कह रहे हैं कृष्ण भगवान, क्या कहते हैं कि तुम जितना नम्र साधारण से साधारण भक्त के साथ में रहोगे, तुम्हारा जैसा व्यवहार साधारण से साधारण भक्त के साथ में होगा, मैं समझूंगा कि वो व्यवहार तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो ऐसे हमारे व्यवहार रहेंगे तो फिर हम कृष्ण कथा की गुह्य बातें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी तरह से सूत गोस्वामी को भी नैमि शरण में एकत्र हुए ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप भी आपके गुरु के बहुत प्रिय हैं, बहुत स्निग्ध और विनीत रहे हैं आप, इसलिए आपको सारी बातें मालूम है। भगवान ने आपको अंदर से सब साक्षात्कार करा दिया है, इसलिए आप हमें कृपा करके ये सब बताइए। इस तरह से हमारे लिए ये बहुत अनुसरणीय बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे व्यवहार में और हमारे समझ में साक्षात्कार में बहुत गहरा संबंध है। ऐसा नहीं कि हम केवल हम नम्र न रहें, किसी भी तरह का व्यवहार करें और केवल किताब पढ़ के पुस्तक पढ़ के हम सोचे कि हम जान लेंगे, नहीं। यह पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, इसका साक्षात्कार होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तस्त, ज्ञान विज्ञान से ही आदमी तृप्त हो सकता है। तो फिर अब यह प्रसंग चल रहा है कि कृष्ण भगवान ने अगासुर का वध कर लिया और सारे ग्वाल बालों को एकत्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गोपगण, चलो अपने अपने ग्वालों को, अपने अपने वत्सों को, गायों को ले आओ, चलो हम चलते हैं, और फिर से वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो कृष्ण भगवान ने इतना स्नेह अपने ग्वाल बाल मित्रों के प्रति प्रतीत किया, व्यक्त किया, उनके संग में सुंदर सुंदर लीलाएं किए, गौओं को चराया, और इस तरह से कृष्ण भगवान इस संसार के लोगों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए ऐसे बहुत ही मन को आकर्षित करने वाले लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। ये सब भगवान की कृपा है कि ऐसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और फिर यहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनको यमुना के तट पे वो सबको लेकर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत एक सुंदर स्थान है और इस सुंदर स्थान में हम यहाँ पिकनिक करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, भोजन करेंगे। और किस तरह का स्थान है, बहुत सुंदर ढंग से शुकदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक में वृंदावन का वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। और इस श्लोक को पढ़ने से ऐसे लगता है कि हमारे सामने वृंदावन है। तो क्या वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी वृंदावन का? अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेलि संपन्न मृदुलाच बालुकम स्फुटत सरोगंधरताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर एक शब्द इसमें बहुत मधुर है। हे अहो, हे वयस्याह, वयस्याह मतलब हे मेरे मित्र, हे ग्वाल बाल, हे गोपगण, जरा सुनो मेरी बात। ये स्थान अति रम्यम, अति रम्य स्थान है ये। कितना सुंदर है ये स्थान। यहाँ पुलिन यमुना के तट पर देखो तो कितना सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि यहाँ पर स्वकेली संपन्न ये जगह जो है हमारे क्रीड़ा के लिए, हमारे खेल के लिए संपन्न है। इसमें सारे व्यवस्था है, इसमें हमारे खेल कूद के लिए सारे सामग्री यहाँ पर हैं। स्वकेली संपन्न, केली का अर्थ है खेल, क्रीड़ा। हम हर रोज सुबह को जब गुरुवाष्टक गाते हैं तो हम एक पंक्ति कहते हैं, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई या याल भीर युक्तिर अपेक्षणीया। हमारे भक्त कभी कभी क्या गाते हैं, निकुंज यूनो रति केला सिद्धई। ये केले की बात नहीं है, ये केली है, केली, केला नहीं है। केली मतलब क्या है? लीला, क्रीड़ा, खेल। तो यहाँ क्या बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? कह रहे हैं निकुंज, निकुंज मतलब निकुंज में, वृंदावन में, यूनो राधा और कृष्ण रति प्रेम के लीलाएं कर रहे हैं। रति केली सिद्धई या अली भी, अली कौन है? मोहम्मद अली बक्सर या फिरोज अली पड़ोस वाला? नहीं, अली मतलब भ्रमर और अली मतलब गोपी। तो जो गोपियां हैं उनको अली कहते हैं। तो इस तरह से या अली भीर, या अली, अली भीर युक्तस्य अपेक्षणीय। तो जब राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं निकुंज में, वृंदावन में, और अन्य जो गोपियां हैं अली युक्तस्य, वो उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि उनको सारे सब सामग्री मिल जाए, उनको जो भी चाहिए, हार है, चंदन है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एकत्र करके सेवा करते हैं। और क्योंकि ये गुरुवाष्टक प्रार्थना है तो क्या भाव है गौड़ी वैष्णवाचार्य के बारे में, कि वो ऐसे गोपियों की सेवा करते हैं जो कि राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए जो गुरु तत्व है जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, वो मंजरी है। मंजरी वो होते हैं जो गोपियों की सेवा करते हैं जो कि राधा रानी की सेवा करते हैं। तो ये केली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई। तो ये हुए माधुर्य लीला, मतलब माधुर्य रस की लीला। और यहां पे यमुना के तट में कौन सी लीला होने वाली है? सख्य रस की लीला। इसलिए यहाँ पे स्वकेली संपन्न, ये केली कौन सी है? जब कृष्ण भगवान अपने ग्वालबाल मित्रों के साथ में सख्य रस में लीला कर रहे हैं। तो वृंदावन के गुण ये हैं। वृंदा देवी का धाम है ये वृंदावन। वृंदा देवी यहाँ विराजमान है, वो सारे देखभाल करती हैं कृष्ण भगवान के लीला के लिए सब कुछ है कि नहीं है। उनके पास कई तरह के तोते होते हैं, तोतों को सब जगह भेज भेजते रहते हैं कि देखो यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। उनके साथ पौर्णमासी देते हैं। और इस तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला के लिए और अन्य लीलाओं के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। इस तरह से ये जो वृंदावन का स्थान है यमुना पुलिने, यहां पर सब कुछ संपन्न है। और आगे क्या कहते हैं, मृदुलाच्छ बालुकम। ये पुलिन, ये नदी का तट कैसा है? यहाँ का जो बालू है बालुकम कैसा है? मृदुल, मृदु अर्थात बहुत ही सॉफ्ट, नरम है। अच्छा, अच्छा मतलब साफ। हम कहते हैं ना साफ शब्द को हम कहते हैं स्वच्छ, ये अच्छ धातु से आता है। अच्छा मतलब साफ और सु अच्छा मतलब बहुत साफ, इसको स्वच्छ कहते हैं। सु अच्छे से आया स्वच्छ। तो यहाँ कहते हैं मृदुलाच्छ बालुकम, देखो यहाँ बालू जो है कितना स्वच्छ है, सफेद है। वैसे गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये जो बालू है वहां पर इतना शुद्ध था कि कर्पूर को जब हम उसको कूट कर जब उसका पाउडर बनाते हैं जितना सफेद सफेद लगता है, उसी तरह यमुना जी का तट जो है ऐसे लग रहा था कि मान लो कि कर्पूर यहाँ सब जगह है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे पिघला हुआ चांदी फैला हुआ सब जगह, इतना सफेद था। तो कल्पना कीजिए अपने मन में, जैसे सुखदेव गोस्वामी और आचार्य वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का, ये वृंदावन है, चल रहा है वर्णन, और आगे कह रहे हैं स्फुटत सरो गंध, स्फुटत सरो मतलब खिलते हुए सरह, सरह मतलब कमल पुष्प, कमल पुष्प सब जगह खिल रहे हैं, जो वहां के नदियां हैं, कुंड हैं, यमुना जी हैं, सब ऐसे कमल पुष्पों से भरे हुए हैं, और उनकी जो रेणु हैं, पराग हैं, वो सब जगह फैले हुए हैं। सारा वृंदावन में हम देखते हैं कि कमल पुष्पों के रेणु पड़े हुए हैं इधर उधर, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप कल्पना करते रहिए। और गंध, सरह गंध, और जो वायु है, जो हवा है, वो इस कमल पुष्पों के ऊपर चलती है या रेणु है उसको बिखार देती है सब जगह, और फिर जो इस कमल पुष्प की गंध है उसको इधर उधर फैला देती है। बताया जाता है वायुना विदाख्येन सुगंधेन सुगंधितम, कि वायु तीन प्रकार के गंध ले जाती है, अलग अलग तरह के सुगंध ले जाती है। देखिए वृंदावन में कितना रम्य अवस्था वातावरण हुआ होगा, यहाँ शहर में कैसे गंध आते हैं हमें, अलग अलग तरह के गंध, सब दुर्गंध आते हैं जगह जगह के, शराब के अड्डों के, गाड़ी के धुएं के, है ना, लोगों के सिगरेट के, बीड़ी के, अलग अलग तरह के गंध। लेकिन वृंदावन में कैसा गंध आता था, केवल कमल पुष्पों का, तीन प्रकार का गंध वहां पे आया करता था। और इस वायु में, इस हवा में जो पानी के बूंद हुआ करते थे, जो कि यमुना जी से और जो नदियों से और कुंडों से हवा उठा लेती थी, और उठाकर फिर उसको बिखार देती सब जगह, इसलिए वृंदावन में सब जगह इस हवा में पानी के बूंद लगते थे। जहां भी कोई जाता था तो मान लो कि ऐसे कोई पिचकारी लगा रहा है, ये है वृंदावन। और इस तरह से इस ये हवा जो है ये सारे वृंदावन को शीतल बनाती थी, और इस गंध से ये सारे फूल जो है आकर्षित करते थे, हृत किनको आकर्षित करते थे, अली पत्रिका, अली मतलब भ्रमर, पत्रिका मतलब नाना प्रकार के पक्षी, इसलिए वहां पर अलग अलग तरह के पक्षी आया करते थे। जो षड गोस्वामी अष्टकम में हम पढ़ते हैं, कूजित कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले, श्रीनिवास आचार्य वर्णन करते हैं कि षड गोस्वामी जब थे वृंदावन में उस समय भी ऐसे ही वातावरण था। कैसे, वो कहते हैं कि हंस, सारस, कोयल, ये सारे पक्षी कू 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 उनकी आवाज, मधुर आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती थी। आज भी आप जाएंगे बरसाना वृंदावन बाहर, आप देखेंगे कि मयूर हैं, कोयल फिर भी हैं, इतने साल बाद भी, तो उस समय कितना मधुर वातावरण होता होगा, हुआ होगा, आप कल्पना कीजिए। ध्वनि प्रतिध्वान, और वहां पर उस समय सारे पक्षियों की आवाज, कोयल की कूकू और मयूरों के गान और उनका नृत्य, ये सब चलता था वृंदावन में। लसत द्रुमाकुलम, और सुंदर सुंदर वहां वृक्ष भी थे, और जिस स्थान पर कृष्ण भगवान इन ग्वाल बालों को लेकर आए वहां पर लंबे लंबे वृक्ष थे हरे रंग के, और उनके शाखाएं ऐसे करके ऊपर एक छत बना रही थी, जिसके नीचे बैठकर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन लेने के लिए बैठ गए। तो ये है वृंदावन। केवल वृंदावन का वर्णन सुनने से हमें लगता है कि कितना अच्छा स्थान हुआ होगा, तो ऐसे ही हमें गोकुल धाम में बनाना है। गोकुल धाम का नाम सुनकर सब लोग जाग गए। तो खैर, वृंदावन, यही वृंदावन अभी भी है, लेकिन अप्रकट रूप में कृष्ण अभी तक हैं। बताया जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य न पदम एकम गच्छति, कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं लेते हैं वो। तो कृष्ण भी हैं, अभी राधा रानी हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, अभी भी सारी लीलाएं उनके चल रही हैं वृंदावन में, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे वो आंखें नहीं है। इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, इसको सुनने के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। वो क्या कहते हैं, विषय छाड़िया कबे, कब वो दिन आएगा जबकि मेरी इंद्रियां इन विषयों को का भोग करने के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे, इंद्र तृप्ति की इच्छा से मेरा मन कब मुक्त हो जाएगा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कब मेरा मन ऐसे इंद्र तृप्ति की भावना से शुद्ध हो जाएगा, और कब वो समय आएगा जब मैं वृंदावन धाम को का दर्शन कर पाऊंगा। कौबे हमा हेरबो श्री वृंदावन, किस वृंदावन की बात कर रहे हैं वो? केवल वो वृंदावन नहीं जहां आप रेल का टिकट खरीद कर जा सकते हैं, जाकर मथुरा उतरे, मथुरा से फिर वहां और टांगा या रिक्शा ले लिया और फिर वृंदावन पहुंचे, जहां आपको सुअर दिखाई पड़ते हैं, बंदर दिखाई पड़ते हैं, गटर दिखाई पड़ रहे हैं, पांडव लोग पीछा कर रहे हैं, केवल उस वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं वो इस वृंदावन की बात कर रहे हैं जहां इस श्लोक में हमने वर्णन पढ़ा है। सब जगह कृष्ण की लीला चल रही, कृष्ण ग्वाल बालों के संग में खेल रहे हैं, जहां मयूर हैं, कोयल हैं, हंस हैं, सारस हैं, जहां अति रम्य वातावरण है, ऐसे वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं वो, और सुखदेव गोस्वामी ने इसी वृंदावन को हमारे आंखों के सामने जीवित कर लिया है इन श्लोकों के माध्यम से। तो वहां इस स्थान पर जब पहुंचे, कृष्ण भगवान कहने लगे कि देखो हे गोपगण, ये जगह जो है इतना आरामदायक है, सुखद है, मानो जैसे बच्चे के लिए माँ की गोदी होती है। बच्चे को आप अच्छे से कोई डनलो पिलो के तकिया भी देंगे, वो उसको उतना आराम नहीं मिलेगा जितना कि उसको माँ की गोदी में मिल जाता है ना? तो उसी तरह से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए इतना ही सुखद है, आरामदायक है, कितनी अच्छी जगह है। और क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दिवारूढ़ क्षुदार्दिता वत्सः समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैतृणम्। अत्र इस जगह में भोक्तव्यम, कृष्ण बोल रहे हैं हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए हे ग्वाल बाल, अस्माभिर् हमें लेना चाहिए। क्यों? दिवा आरूढ़म, बहुत देर हो चुकी है, वास्तव में 3 घंटे बीत चुके थे अघासुर के वध के बाद में। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं समय बीत रहा है, 3 घंटे बीत चुके अघासुर का वध किए हुए, और हम क्षुधा आर्दिता, क्षुधा मतलब भूखे हैं, आर्दिता मतलब थके हुए हैं। तो हे गोपगण, इतना समय बीत गया, हम सब भूखे हैं, थके हुए हैं, तो चलो हम अभी भोक्तव्यम, हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो चलो यहाँ पर बैठ जाएं। और वत्सों के बारे में क्या किया जाए, गायों के बारे में, वत्सः समीपे अपह पीत्वा, वत्स जो है समीप में, पासी में, अपह, अपह मतलब क्या है, जल, जल पीत्वा, वो जल पिएंगे वहां पर, चरम तो शनक स्त्रणम, और धीरे धीरे हिलते डुलते वो जाके घास खाएंगे। बस ये है गायों को संतुष्ट करने का तरीका, उनको छोड़ दीजिए हरे भरे खेत में या घास में, आराम से चलते चलते वो जाके घास खाएंगे, अपना घास खाएंगे, अपने दूध देंगे, अपना काम संभालेंगे। बस ये है गाय, सात्विक है बड़ी गाय, व्यवस्था प्रिय है, शांति प्रिय पशु है ये गाय, किसी को परेशान नहीं करती, हम जैसे मनुष्यों जैसे। मनुष्य जहां उसका काम नहीं है वहां जाके कुछ न कुछ जाके परेशानी दूसरों के लिए उत्पन्न कर देता है, जहां उसका कोई कष्ट देते हैं कि ऐसा क्यों करते हो वैसा क्यों करते हो। तो गाय ऐसे नहीं है, गाय अपना अपना काम संभालती है आराम से, धीरे धीरे शनक चरम तू शनक प्रणाम, धीरे धीरे से हल्के हल्के से चल के घास खाती है और हमें अमृतमय दूध का पान कराती है। देखो गाय के कितने अच्छे गुण हैं और किस तरह से गाय चरती है, शनक धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं, ये सत्वगुण का लक्षण है। लेकिन आजकल हम हमारे भोजन को खाने के लिए क्या करते हैं, भाग दौड़, इधर भागो उधर भागो, गाड़ी ले लो मोटरसाइकिल ले लो और उससे भी संतुष्ट नहीं तो हवाई जहाज से जाओ, इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं सभी लोग। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी हम बताते हैं शनय के शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मनुष्य समाज को ये ज्ञात हो कि हमें भी गायों की सेवा करनी चाहिए और गायों को सीखना चाहिए कि कैसे हमारा जीवन भी हमें थोड़ा धीरे से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में भाग दौड़ सुबह से रात में लगे हैं। किसी को पूछिए कि भाई साहब क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, पता नहीं दौड़े जा रहे हैं। तो इसलिए जब गाय की सेवा करेंगे, कृषि करेंगे तो कोई जल्दी नहीं, खेती करो, कीर्तन भजन करते हो, खेती करो, काटो, गाय की सेवा करो, गाय से दूध निकालो, दूध पियो और फिर शुद्ध अनाज खाओ, फल फूल खाओ, हृष्ट पुष्ट हो जाओ, फिर कीर्तन में नाचो कूदो करो, ये है जीवन, कृष्ण कथा सुनो। तो ये है गाय और कृषि पे आधारित जीवन, कृष्ण भगवान ने अपने लीला से हमें सिखलाया है। तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम आके यहाँ बैठ कर भोजन करते हैं, तो ग्वाल बाल कहने लगे हे कृष्ण तुम हर हम एक है। देखो कितना मधुर भाव है, जैसे बच्चे आपस में बोलते हैं ना। तो ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण तुम और हम एक, हमें भूख लगी है इसका मतलब तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो चलो हम आकर यहाँ पर बैठ के प्रसाद लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, अच्छी आइडिया है, चलो हम सब यहाँ बैठ कर प्रसाद लेते हैं। और इसके बाद में कृष्ण भगवान ने सब ग्वाल बालों को लेकर उस स्थान पर गए, ग्वाल बालों ने अपने अपने वत्सों को मुक्त कर दिया ताकि वो जाके पानी पिए, चरें, घास को खाएं, और उसके बाद सभी बैठ गए। लेकिन बैठने के पहले थोड़े उनमें से ग्वाल बाल जो हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो वो आके कृष्ण को कान में कहने लगे कि हे कृष्ण हमने तो घर से कुछ प्रसाद लाया नहीं, हम कुछ लाए नहीं, तो आप लोग सब खाओगे हम भूखे रह जाएंगे, हमने टिफिन लाए नहीं साथ में। तो कृष्ण कहने लगे तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं सबको प्रसाद दिला दूंगा, केवल मेरी बात का पालन करो, मैं जो आदेश दे रहा हूँ वो करो। तो चलो अपना अपना सामान ले लो और यहाँ आके बैठ जाओ। तो सारे ग्वाल बाल जो है उन्होंने अपने रस्सी वगैरह जो है वो निकाले और नीचे रख दिए और सब बैठ गए। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ये अभी का श्लोक है, जब बैठे तो कैसे बैठे, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको कृपा करके ध्यान से पढ़िएगा और हमारे पीछे दोहराइएगा। यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडलैर अभ्यान ना फुल्ल दृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजो छदा यथाम्बोरुः कर्णिकायाः कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडलैर